ईशानी के बारे में सब कुछ जानने के बाद रुद्राक्ष को अब और वेट नहीं हो रहा था। वो उसके पास जाने की जिद कर रहा था, तो मोक्ष ने दीपिका जी को कॉल लगाया। दीपिका जी ने यही कहा कि अभी कुछ देर में ईशानी और रुद्री वहां से निकलने वाले हैं, ऐसे में रुद्राक्ष अगर यहां से ईशानी से मिलने जाता भी तो वो उससे मिल नहीं पाता। ईशानी का मोबाइल चार्ज नहीं होने की वजह से बंद हो गया था। वो दीपिका और रुद्री के साथ बैठकर बात कर रही थी। दीपिका की कॉल पर बात करते ही ईशानी ने पूछा, मोक्ष का कॉल आया होगा ना, मेरा फोन बंद है तो उसे टेंशन हो गई होगी। हाँ, कॉल तो उसी ने किया था, लेकिन लगता है कि कोई और तुमसे मिलने के लिए ज्यादा बेचैन हो रहा है, दीपिका ने मुस्कुराते हुए कहा। उनका इशारा सीधे सीधे रुद्राक्ष की तरफ था। ईशानी ने उनकी बात सुनकर सिर हिलाया और सार्कास्टिक वे ने कहा, वो मुझसे बात करने के लिए नहीं माँ, मुझसे लड़ने के लिए बेचैन हो रहे होंगे। ठीक है, फिर हम चलते हैं यहाँ से, दीपिका ने तुरंत ईशानी को चिढ़ाते हुए कहा। अरे ऐसे कैसे यहाँ से चली जाओगी, वो इंतजार कर सकता है, मैंने कहा था ना कि खाना तैयार है। तुम डाइनिंग टेबल पर रुद्री जी के साथ पहुँचो, मैं तब तक खाना गर्म करके लेकर आती हूँ। अब तक तुम्हारे और मोक्ष के मुँह से इनका नाम ही सुना था, आज ये खुद यहाँ तक आई हैं तो ऐसे ही थोड़े ना जाने दूंगी। ऊपर से अब तो एक रिश्ता भी बन गया है। हमारा रिश्ता तो बहुत पहले से था दीपिका जी, बस मिलना ही नहीं हो पाया, रुद्री ने मुस्कुराकर कहा। ईशानी ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाया। दीपिका वहां से उठकर जाने को हुई, तभी रुद्री ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, आप ईशानी के साथ थोड़ा टाइम बिताइए, खाना मैं गरम कर लूंगी। अरे नहीं, आप कैसे, मैं कर लूंगी, दीपिका हिचकिचाते हुए बोली। मैं क्यों नहीं कर सकती, ईशानी मेरी बहू नहीं मेरी बेटी की तरह है, वैसे भी रुद्राक्ष से ज्यादा मेरी इसके साथ बनती है। आप प्लीज शर्म मत कीजिए, मैं लेकर आती हूँ। मैं आपको आज अपने हाथों का स्पेशल डेजर्ट बनाकर भी खिलाती हूँ, बस मुझे आधे घंटे का टाइम दीजिए, रुद्री ने जवाब दिया। दीपिका को इन सब में काफी अजीब लग रहा था, वो अभी भी झिझक रही थी। उसने कहा, ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ, सामान कहाँ रखा हुआ है मैं बता दूंगी। दीपिका ने उठकर रुद्री के साथ चलना चाहा, लेकिन रुद्री ने उनका हाथ पकड़कर उन्हें वहीं रोककर कहा, प्लीज आप इस तरह फॉर्मल मत रहिए। दीपिका को इस तरह झिझकते हुए देखकर ईशानी ने कहा, माँ आप मॉम को कर लेने दीजिए, वो बिल्कुल आपकी तरह मुझसे प्यार करती हैं, इन्हें कुकिंग करना बहुत पसंद है। रुद्री ने मुस्कुराकर ईशानी की बात पर हामी भरी और फिर किचन की तरफ बढ़ गई। उनके जाते ही दीपिका ईशानी के पास आ गई। ईशानी ने दीपिका की गोद में अपना सिर रख लिया और वो धीरे धीरे उसके बालों को सहला रही थी। मैंने आपको बहुत मिस किया मां, रुद्राक्ष ने आपके साथ जो भी किया उसकी तरफ से मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। वो दिल के बुरे इंसान नहीं है, पर उनकी फैमिली अच्छी नहीं है, बस उनकी बातों में आ जाते हैं, ईशानी ने रुद्राक्ष की तरफ से माफी मांगी। ईशानी की बात सुनकर दीपिका के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो बोली, तुम्हें ये बताने की या उसकी तरफ से सफाई देने की जरूरत नहीं है ईशी, उसका दिल कैसा है मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। ईशानी ने हैरानी से दीपिका की तरफ देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था दीपिका किस बारे में बात कर रही है। ईशानी ने जल्दी से पूछा, आपने कब रुद्राक्ष का असली चेहरा देख लिया, पिछली बार जब आप पहली बार उससे मिली थी तब उसने मेरे साथ बहुत बुरा बिहेव किया था और आपके साथ भी, आपके साथ उसने अपने आदमियों को भेजा था ताकि वो आप पर नजर रख सके। हाँ पहले तो मुझे भी यही लगा था, लेकिन वो आदमी मुझ पर नजर रखने के लिए नहीं मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए आए थे, उनके होते हुए मुझे कभी किसी चीज़ की जरूरत महसूस नहीं हुई, ऐसा कोई भी सामान लाना हो या जॉब से आने के बाद घर का कोई काम करना हो तो कभी मुश्किल महसूस की नहीं होगी। वैसे तुम जिन आदमियों की बात कर रही हो उनके नाम रोहन और प्रतीक हैं, दोनों बच्चे बहुत ही अच्छे हैं, रुद्राक्ष ने खास उन्हें मेरा ख्याल रखने के लिए ही भेजा था, दीपिका ने पूरी बात ईशानी को बता दी, जिसे सुनकर ईशानी को वाकई काफी हैरानी हुई। सच में वो इतने अजीब कैसे हो सकते हैं, ईशानी ने धीरे से कहा। अजीब नहीं, बहुत ही अच्छा लड़का है, जब तुम उसके साथ गई थी तो मैं बहुत डर गई थी, यही प्रार्थना करती थी कि कैसे भी करके तुम उससे दूर हो जाओ, लेकिन बाद में जब धीरे धीरे सब समझ आया तो ये भी पता चल गया कि रुद्राक्ष से बेहतर लड़का तुम्हें मिल ही नहीं सकता, दीपिका ने ईशानी के गाल को सहला कर कहा। ईशानी कुछ सोचने लगी, वो कुछ पल रुक कर बोली, मैं मुंबई आई थी तब उन्होंने आपकी एक फोटो दिखाई थी, उस फोटो में आप बंधी हुई थी, उन्होंने मुझे ब्लैकमेल किया और कहा कि उन्होंने आपको किडनैप कर लिया है। अच्छा, तभी तुम इतनी रात को मुझसे बात कर रही थी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हो सकता है तुम्हें परेशान करने के लिए उसने कोई फोटो वगैरह एडिट किया हो, दीपिका ने जवाब दिया। ईशानी आगे कुछ कहती उससे पहले रुद्री ने उन्हें खाने के लिए आवाज लगा दी थी। ईशानी के मन में काफी कुछ चल रहा था, वो मन ही मन बोली, आप बिल्कुल जलेबी की तरह हो, टेढ़े लेकिन उतने ही स्वीट, अजीब बात है मेरे साथ रहते हुए आपने कभी महसूस नहीं होने दिया कि आप माँ का इतना ख्याल रख रहे हो, खैर जो भी हो अब पता नहीं आप मुझसे बात करने के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हो रहे हो, पक्का मुझे डांट ही लगानी होगी, रुद्राक्ष के बारे में सोते हुए ईशानी के चेहरे पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई, जिसे ही दीपिका और रुद्री ने नोटिस कर लिया। रुद्री ने ईशानी को परेशान करते हुए कहा, ओ तो तुम रुद्राक्ष के बारे में सोच रही हो, कुछ देर बाद हम उसी से मिलने वाले हैं, खाना खा लो ताकि जल्द से जल्द यहाँ से निकले। ईशानी की चोरी पकड़ी गई थी तो उसने मुस्कुराते हुए अपने बालों को कान के पीछे किया और खाना खाने लगी, उसके गाल लाल हो गए थे। डिनर के बाद रुद्री और ईशानी वहां से निकलने को हुई, जाने से पहले ईशानी ने दीपिका को गले लगाया और उसे विदा किया। रुद्री और ईशानी फिर वहां से मुंबई के लिए निकल चुकी थी, उन्हें लगभग 2 से 2.5 घंटे के बीच का सफर तय करना था। वहीं दूसरी तरफ खुराना मेंशन में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ रहा था। रुद्राक्ष में जिस तरह से आलिया को थप्पड़ मारा था और फिर उन सबके रोकने के बावजूद वो ईशानी और रुद्री के पास गया था, इस बारे में विक्रांत को पता चल चुका था। माया खुराना, आलिया, दिव्या और विक्रांत आलिया के घर के लिविंग रूम में थे और इसी बारे में बात कर रहे थे। विक्रांत को जब पूरी बात पता चली तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था। विक्रांत ने आलिया की तरफ देखकर सख्त अंदाज में कहा, यह सब इस लड़की की वजह से हुआ है। मैंने पहले ही कहा था कि इसे अपने मनमानी न करने दी जाए, लेकिन रुद्राक्ष ने मेरी एक नहीं सुनी। अब इसी की वजह से रुद्राक्ष घर छोड़कर गया है। मुझे तुम्हारे गुनहगार होने या बेगुनाह होने से फर्क नहीं पड़ता है आलिया, लेकिन मैं रुद्राक्ष को खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। विक्रांत आलिया के साथ कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। ये देखकर दिव्या ने मायूसी से कहा, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आलिया भी आपकी बेटी है, फिर आप रुद्राक्ष को हमेशा सबसे ऊपर क्यों रखते हो? क्योंकि आज तुम लोग जिस ऐशो आराम पर जी रहे हो वो रुद्राक्ष का दिया हुआ ही है। अगर वो गया तो मेरी कंपनी को बहुत नुकसान पहुंचेगा। ऊपर से संजना और रुद्राक्ष की शादी भी तय हुई है, पता है ना इस शादी के बदले राहुल मित्तल हमारा कितना फायदा कर रहा है? विक्रांत ने चिढ़कर जवाब दिया। माया उनकी बातें गौर से सुन रही थी। जब उनकी बात खत्म हो गई तो माया ने विक्रांत की तरफ देखकर सख्ती से कहा, गलती अकेले आलिया की नहीं है, गलती ईशानी और रुद्री की भी है। उनके साथ रहते हुए रुद्राक्ष भटक गया है और सच बताऊं तो सबसे पहले हमारा उनसे पीछा छुड़ाना जरूरी है।
हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ। रुद्री के कुछ ज्यादा ही पर निकल आए हैं। रुद्राक्ष कुछ दिनों के लिए उसके पास क्या आया, उसे ये गलतफहमी हो गई कि उसे उसका बेटा मिल गया। लगता है उन लोगों को उनकी औकात दिखाने का वक्त आ गया है, विक्रांत ने सिर हिलाकर कहा और फिर वहां से बाहर जाने लगा। बाहर जाते ही उसने किसी को कॉल पर कहा, पीछा कर रहे हो ना तुम उन लोगों का? हाँ, उन्हीं के पीछे हूँ, बस आप ही के ऑर्डर्स का इंतजार है, सामने से एक लड़की की आवाज़ आई। विक्रांत रुद्राक्ष को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने अपने आदमियों को ईशानी और रुद्री के पीछे लगा रखा था। वो मोक्ष और रुद्राक्ष पर भी नज़र रख रहा था। कोई भी डिसीजन लेने से पहले विक्रांत ने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और वो जल्दी से बोला, खत्म कर दो उन्हें। उस आदमी ने विक्रांत की बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। उसके कॉल कट होते ही विक्रांत ने कहा, ईशानी हम सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं इतने सालों की इज्जत और रुतबे को एक पल में खो दूं। रुद्राक्ष को मैंने ट्रेन करने में बहुत मेहनत की है, उस लड़की के चक्कर में मैं उसे नहीं खो सकता। विक्रांत फिर बिना मुड़े वहां से चला गया। उसके पीछे माया खड़ी थी जो सारी बातें सुन रही थी। उसने उस लड़की को वापस कॉल किया और कहा, प्लेन मैंने सुबह ही तुम्हें बता दिया था, पता है ना क्या करना है? जी मैडम, अच्छे से पता है और सारी तैयारी हो गई है, उस लड़की ने मुस्कुराकर कहा और फिर कॉल कट कर दिया। वहीं माया के चेहरे के भाव सर्द थे और वो इस अंदाज में बोली, तुम रुद्री के चक्कर में सब कुछ भूल सकते हो, लेकिन हम नहीं। हमें अच्छे से याद है उसने कैसे सबके सामने हमारी इंसल्ट की थी, और उस लड़की को हम उसके लिए कभी माफ़ नहीं करेंगे। हम उसे अपने तरीके से सजा देंगे। माया ने कुछ और ही प्लान किया था, और वो क्या था वो तो वो लड़की और माया ही जानती थी। वहीं रुद्री के घर पर मोक्ष से बात करने के बाद रुद्राक्ष अपने कमरे में आ गया। उसे इंतजार नहीं हो रहा था तो उसने फिर से ईशानी को कॉल किया और इस बार कॉल कनेक्ट हो गया था। ईशानी रुद्री के सामने कॉल पिक करने से हिचकिचा रही थी तो रुद्री ने कहा, मैं अपने कान में एयरपॉड्स डाल रही हूँ, तुम आराम से बात कर लो, मैंने मेरे बेटे को इतना एंग्शियस कभी नहीं देखा। रुद्री ने अपने कान में एयरपॉड्स डाल लिए ताकि ईशानी आराम से रुद्राक्ष से बात कर सके। ईशानी ने कॉल रिसीव किया और कहा, इतनी बार कॉल करना ज़रूरी है क्या? घर पर आकर भी डांट सकते हो आप मुझे, और ये ज़रूरी है क्या कि हर बार मैं तुम्हें डांटने के लिए कॉल करूं और फिर अपने करीब लेकर आऊं? जल्दी घर पहुंचो, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, रुद्राक्ष ने सिर हिलाकर कहा। बात नहीं करनी, आपको मुझे डांटना है। मैंने कोर्ट में जो भी किया उसकी वजह से आप गुस्सा हो, पर ठीक है, मैं आपकी डांट सुनने के लिए तैयार हूँ, बस थोड़ा टाइम दीजिए, आपके पास पहुँच ही रही हूँ, ईशानी ने मुस्कुराकर कहा। ईशानी का पूरा ध्यान रुद्राक्ष से बात करने में था, तो वहीं रुद्री भी म्यूजिक सुनते हुए ड्राइव कर रही थी। सुनसान सड़क होने की वजह से उन्हें ज्यादा कुछ ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक उनके पीछे से एक ट्रक आया और सामने से एक बड़ी गाड़ी। उन्होंने रुद्री की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। इतनी जोरदार थी कि उनकी गाड़ी 3 से 4 बार पलट कर किसी पहाड़ी पर चढ़ गई थी। ईशानी से बात करते हुए अचानक रुद्राक्ष को वहां कुछ गाड़ियों के भिड़ने और फिर रुद्री और ईशानी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। कुछ ही देर में सब कुछ बिल्कुल शांत हो चुका था। कहानी यहाँ से बहुत इंटरेस्टिंग मोड लेने वाली है, तो कहानी के साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए। अगले पार्ट पर मिलते हैं, और पढ़कर प्लीज समीक्षा कर दीजिएगा, इससे काफी मोटिवेशनल मिलता है।